ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚರಿ ತೀರ ಬನ ಚರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್ಷಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಧಿಷ್ಠವಾಹಿನಿ ಗಿರೀಶ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಸ್ ಕಾನ್ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿವ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೀ ಜಯ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತಿ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಜಯ ಸಮವೇದ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ವರ್ತಮಾನಾಚಾರ್ಯ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ जय दत्त चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दो, श्लोक संख्या 68 से लेकर के 86 तक। तो ये जो अध्याय है इसमें ये स्थापित किया गया है कि भगवान कृष्ण ही समस्त अवतारों के कारण हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही समस्त अवतारों के कारण हैं, और दूसरी बात क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान कृष्ण हैं। दो सत्यों की स्थापना की गई है। तो इसके पहले कृष्णदास कविराज ने श्रीमद् भागवत के श्लोक उद्धृत किया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति योगे योगे। तो इसमें सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में सब अवतारों की एक सूची बता करके, संक्षेप में सब अवतारों का विवरण दे करके, और फिर ये कहा कि ईश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्ण साक्षात भगवान है। अब इसके आगे कृष्णदास कविराज हमें समझा रहे हैं कि इस श्लोक को हम किस प्रकार समझें। तो आवाज साफ नहीं? हरे कृष्णा, अभी ठीक है? आप ठीक है? अच्छा, तो मैं ये प्यारे पढ़ रहा हूं और अंत में फिर सब के साथ में ये प्यार पढ़ेंगे जो बोर्ड में लिखा हुआ है। सब अवतार कर सामान्य लक्षण, तारे मध्य कृष्ण चंद्र करी लगणन। सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करके उन्हीं में ही श्री कृष्ण की मैंने गणना करी है। सुध गोस्वामी ये सोच रहे हैं, सुध गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैंने कृष्ण का भी नाम सब अवतारों में वैसे जोड़ दिया जैसे कि साधारण है। तब सुत गोसाई माने पाया बड़े भयं, जारे जे लक्षण ताहा करेला निश्चय। इससे सुध गोस्वामी अत्यधिक भयभीत हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उसके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। सुध गोस्वामी को अंदर काफी डर पैदा हुआ। क्या? कि वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? कृष्ण का भी नाम बताया है ना, शायद कौन सी संख्या है कृष्ण की, कृष्ण का नाम दिया और बलराम का नाम दिया, तो शायद 19वां और 20वां है ना, 19वां कृष्ण का अवतार बताया, 20वां बलराम का अवतार बताया, ऐसे बताते गए है ना। तो जो भी हो, तो बुद्ध अवतार बताया और चार कुमारों का अवतार बताया, नारद जी का अवतार बताया, पृथु मत्स्य वराह कूर्मे दत्तात्रेय, ऐसे अवतारों की सूची में कृष्ण को भी उन्होंने डाल दिया। तो यहां कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि वो बहुत भयभीत हो गए है? कि ये तो बहुत गलत सूचना मैंने दे दी। अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। इसलिए ये जो श्लोक है जो कि भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, उसमें फिर सुध गोस्वामी स्पष्टीकरण करते हैं कृष्ण के बारे में। क्या कहते हैं? ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश या अंश के अंश यानी कला है, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। वे समस्त अवतारों के उत्स भगवान हैं, स्वयं भगवान कृष्ण। पूर्व पक्ष का है तो मार्भालता व्याख्यानम पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। तो कोई विपक्षी कहेगा, अब कृष्णदास कविराज जी ये तर्क उठा रहे हैं कि अगर कोई विपक्षी कहे कि ये तो तुम्हारी व्याख्या है किंतु वास्तव में तो भगवान नारायण है जो दिव्य लोक में है, तेहा आसि कृष्ण रूपे करेन अवतार। यही अर्थ श्लोक देखे कि आरे विचार। वो नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, मेरी दृष्टि में तो यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विपक्षी कहे कि नारायण से ही कृष्ण का अवतार हुआ है और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं सोचने की, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, तारे कहे केने कारे कुतर्कानुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कभू ना है प्रमाण। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तावित करते हो? वह व्याख्या जो शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। कैसी व्याख्या? कि नारायण आदि भगवान है और नारायण से कृष्ण का अवतार हुआ, इस तरह की जो व्याख्या है, तो आप उसके तर्क को आप उत्तर दे सकते हो कि शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। अनुवादम मनुक्त्वा तु न विधेयम् उदीरयेत् न लब्धास्पदम किंचन कुत्रचिन प्रतितिष्ठति। मनुष्य को चाहिए कि उद्देश्य के पूर्व उसके विधेय को ना बतलाए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। अब इसको समझाएंगे कृष्णदास कविराज कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। अब इस बात को समझो, वही बात अगर हम कहते हैं तो पहले हम कहते हैं उस विषय को जो आपको परिचित है, उसके बाद हम वर्णन करते हैं, वो बातें बताते हैं जो आपको पता नहीं है। अब इसको समझाएंगे कृष्णदास कविराज की इसका क्या मतलब है। तात्पर्य है, ये अलंकार नियम एकादशी तत्व के 13वें स्कंध में शब्दों के आलंकारिक प्रयोग के संबंध में आया है। अज्ञात वस्तु यानी विधेय को ज्ञात वस्तु उद्देश्य के पूर्व नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि उद्देश्य पहले नहीं रखा जाता तो विधेय का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसको जरा समझेंगे कि कृष्णदास कविराज क्या कहना चाहते हैं। अनुवाद न कही अन कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख नहीं करता तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता, अतः पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। विधेय कही तारे जय वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे जय है अज्ञात, जय है ज्ञात। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य वह है जिसे ज्ञात रहता है। अब इसका उदाहरण, जैसे कही ए विप्र पर मैं पंडित, विप्र अनुवाद ए हर विधेय पंडित। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं ये विप्र परम पंडित है। अरे बोल, अभी कोई जाप नहीं करे, कोई जाप कर रहे हैं क्या? यह विप्र परम पंडित है, इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है, उसका पांडित्य है विधेय। जैसे हम कहते हैं ना कि ये प्रभु जी वकील हैं, तो ये तो भक्त के रूप में दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? कोई नहीं जानता कि ये वकील हैं, है ना? तो मैं कहता हूं कि ये प्रभु जी वकील हैं, तो पहले हमने कहा ना कि ये प्रभु जी आप लोग जानते हैं, ये भक्त, ये जो भक्त हैं, है ना? फिर मैंने कहा कि ये वकील हैं, तो आपको पता चला जो पता नहीं था। या अगर मैं कहूं कि ये वकील भक्त है तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये वकील कौन जानता है कि ये वकील है ना? तो कोई भी बात अगर बताई जाती है तो पहले बताई जाती है वो बात जो पता है आपको
कि ये भक्त है, और फिर मैं कहता हूं कि ये वकील है। अच्छा, ये वकील भी है, भक्त तो सबको जानता है कि ये भक्त है,
वकील भी है। अच्छा, तो ये तो कहने का कुछ मतलब हुआ। अगर मैं कहूं कि ये वकील भक्त है, क्या मतलब हुआ? वकील तो कोई जानता नहीं कि ये वकील है कि नहीं? तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये विप्र परम पंडित है, इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है, उसका पांडित्य है विधेय। विप्र तो पता है कि भाई ये ब्राह्मण है, सब लोग जानते हैं ये ब्राह्मण है, ये परम पंडित है, ये सब कोई नहीं जानता। तो बाद में वो बात बताई जाती है जो पता नहीं है। विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ये ज्ञात है,
किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, अतः व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। उसी को कहते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? विप्र। और पांडित्य क्या है? विधेय। तैसे हैं अवतार सब हैले ज्ञातम, कार्य अवतार ए वस्तु अविज्ञातम। उसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किसके अवतार थे ये ज्ञात ना था। कृष्णदास कविराज इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। एते चांस कलापुंसः, एते का मतलब ये सब, तो ये सब का मतलब क्या हुआ? जो पहले गणना हो चुकी जिन अवतारों की, ये सब, तो एते शब्द पहले आया, फिर चांस कलापुंसः ये जो है भगवान के अंश और कलाएं हैं, ये विधेय है। और उद्देश्य क्या है? एते ये सब, जो कि पहले बताए जा चुके हैं। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किसके अवतार थे ये ज्ञात ना था। कि भगवान के अंश और कलाएं हैं, है ना, तो ये विधेय है। एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंत पाछे विधेय संवाद। पहले एते ये शब्द से उद्देश्य यानी अवतार की स्थापना हुई है, तत्पश्चात पुरुष अवतारों के अंश विधेय के रूप में आया है। तैछे कृष्ण अवतार भी तेरे हैल ज्ञात, ताहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। तो फिर कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण पहले आया क्योंकि गणना हो चुकी कृष्ण की पहले, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर कहा है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अतः सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। कृष्ण स्वयं भगवत्ता यह हैल साध्य, स्वयं भगवान एर कृष्णत्व हैला बाध्य। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्यतः कृष्ण है। तो इससे स्पष्ट है कि कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं करते हुआ कि कृष्ण की व्याख्या हो रही है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। आगे कृष्ण यदि अंश है तो अंशी नारायण, तब विपरीत है ते सूतेर वचन। यदि कृष्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंशी होते तो सूत गोस्वामी का कथन पलट जाता, तो इस तरह से सूत गोस्वामी नहीं बोलते। नारायण अंशी ये स्वयं भगवान, ते हम कृष्ण ऐछे करित व्याख्यान। तब ये कहते समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, तो फिर क्या होता? वो नारायणस्तु भगवान स्वयं ऐसा बोलते ना, वो नारायणस्तु भगवान स्वयं है ना, और कृष्णस्तु वो एते चांसकला मुंसा, तो कृष्णस्तु अंशकला, नारायणस्तु भगवान स्वयं ऐसा होता ना, तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि वाक्य के प्रयोग से समझना है। अब यहां पर आप आइए, इसको पढ़ेंगे सब लोग। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाठव, आर्ष विज्ञे वाक्य नहीं दोष ए सब। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाठव, आर्ष विज्ञे वाक्य नहीं दोष ए सब। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाठव, आर्थ विज्ञ वाक्य नहीं दोष ए सब। बोलिए अनुवाद। विज्ञ ऋषियों के वचनों में, बोलिए विज्ञ ऋषियों के वचनों में त्रुटियां मोह, ठगी तथा भ्रांत अनुभूति यानी इंद्रिय अपूर्णता नहीं होती। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि प्रभुपाद जी अक्सर जो इस बात को जो है बताते हैं अपने प्रचार के कार्य में कि हमें शास्त्र की बात क्यों स्वीकार करनी चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में अवतारों, पुरुष अवतारों की सूची दी गई है जिनमें कृष्ण का भी नाम है, लेकिन भागवत में आगे बतलाया गया है कि कृष्ण का विशिष्ट पद भगवान के रूप में है। भगवान मतलब स्वयं भगवान। अगर अवतारों को भगवान कहा जाता है तो कृष्ण को क्या कहा जाता है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान। कि कृष्ण का पद, कि कृष्ण का विशिष्ट पद स्वयं भगवान के रूप में है, क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है, अतएव तर्कों से पुष्टि होती है कि उनका पद सर्वोच्च है। यदि कृष्ण नारायण के अंश होते हैं तो मूल श्लोक भिन्न ढंग से रचा गया होता, तब इसका क्रम उलट दिया गया होता, किंतु मुक्त ऋषियों के वचनों में त्रुटि, मोह, छल छद्म या अपूर्ण अनुभूति नहीं होती, अतएव इस कथन में कोई त्रुटि नहीं है कि कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भागवत के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनियां हैं। श्रील व्यास देव ने पूर्ण साक्षात्कार के बाद इन कथनों को व्यक्त किया है, अतएव ये पूर्ण है, क्योंकि व्यास देव जैसे मुक्त ऋषिगण कभी भी अलंकार व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं करते। जब तक इस तथ्य को मान ना लिया जाए तब तक शास्त्रों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ है। तब यहीं पर हम चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि शास्त्रों को जो है ये नहीं मानना चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि से लिखे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को ऐसे मानता है कि भाई मनुष्य ने अपने अपने विचार उसमें डाले हैं तो फिर उसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय हैं। ये मनुष्य की बुद्धि में ये चार दोष हैं, इनके हम चर्चा करेंगे थोड़ा और भी विस्तार से, और आप लोगों से भी हम कुछ चर्चा कराएंगे इन चार जो त्रुटियां हैं या चार दोष हैं इन पर। तो शास्त्रों में चार प्रकार के दोष नहीं हैं, ये अच्छी प्रकार से समझना है कि शास्त्र अपौरुषेय हैं, है ना। जो लोग कहते हैं कि वेद जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, तो फिर उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हमारा जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि जो वेद हैं अपौरुषेय हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि जो ये वेद हैं ये बहुत प्राचीन पुस्तकें हैं, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है, ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अनादि है, धन्यवाद। कोई व्यक्ति कहता है भाई प्राचीन पुस्तकें हैं इसका मतलब किसी व्यक्ति ने लिखे होंगे वेद, नहीं। जो व्यक्ति कहता है कि वेद प्राचीन पुस्तकें हैं, हमारे भारत की जो है ना बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं वेद, तो वो भी जो है ना गलती कर रहा है, क्योंकि वेद अनादि हैं। वेद कहां से निकले? भगवान के श्वास से, है ना। इनमें कोई मनुष्यों के विचार नहीं है, विचार बदलते रहते हैं, अपने अनुभव बदलते रहते हैं। अभी हमने कुछ अनुभव किया, कुछ देखा, वो हमने कुछ लिख दिया, कोई किताब लिख दी, आगे चल करके पता चलता है कि नहीं नहीं वो सब गलत है, वो तो दूसरी बात। कभी हम किसी प्रभु जी को बोल देते हैं, सोचते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, मैं बोल देता हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो अनुभव हैं तो हमेशा अधूरे रहते हैं मनुष्य के। इस प्रकार के जो अधूरे अनुभव ये भगवान में नहीं है, वेदों में नहीं है। इसलिए वेदों की जो बात है वो हर समय के लिए सत्य हैं, त्रिकाल सत्य। वो कोई ऐसी बात नहीं होती है कि नहीं आज के लिए तो ये ठीक है और कल के लिए फिर बदल जाए, है कि नहीं। तो चीज़ें नहीं हैं, वेदों में अगर कोई चीज़ बताई गई है तो हमेशा के लिए वो सत्य है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों में बताया गया है गाय का जो मल है ये शुद्ध है, गाय का मल शुद्ध है। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने अनुभव के आधार पर विचार करे तो क्या कहेगा, भाई तब कमल अशुद्ध होता है। अच्छे से अच्छे गुरु हो या बहुत शुद्ध भक्त हो, उनका भी मल क्या है, अशुद्ध है, तो फिर गाय का मल भी अशुद्ध है, नहीं ना? तो आप अगर अपने ज्ञान के आधार पर आप निर्णय करें तो आप नहीं कभी निष्कर्ष निकाल सकते कि गाय का जो मल है वो शुद्ध है, कभी नहीं, है कि नहीं? लेकिन जब वेद कहते हैं तो फिर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ये खोज करने में कि खोज की जाए। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने खोज की तो देखा गया कि हाँ सचमुच गोबर में क्या है, वो जो बीमारी के कीटाणु नहीं है, गोबर में नहीं है। हड्डी भी जो शंख है तो एक हड्डी है, तो हड्डी अशुद्ध है। वेद कहते हैं कि हड्डी को छूते हो तो आप स्नान करो, या मल को छूते हो स्नान करो। वही शंख जो है पूजा के स्थान में काम आता है, गोबर भी पूजा के स्थान में लीपा जाता है। तो वेद अगर जो है ना कोई बात बताते हैं तो उसमें जो है ना फिर कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, भगवान गीता में कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण है कि क्या करना क्या नहीं करना। या तो शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम यहां राशि, शास्त्र के कहे हुए विधान को जान करके तुम्हें कर्म करना है। और शास्त्रकार किसे कहते हैं, शास्त्रकार जो शास्त्र की रचना करने वाला है, वो कौन है, व्यास जी शास्त्रकार है, वो शास्त्र लिखने वाले हैं, कोई मनुष्य नहीं लिख सकता है। व्यास जी और मनुष्य मान लिया तो बहुत गलत है। गीता में भगवान क्या कहते हैं व्यास जी को, कि मैं ही हूं वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं, वेदांत की रचना करने वाला मैं हूं, वेद को जानने वाला मैं हूं। यानी व्यास जी के रूप में भगवान ने ही शास्त्रों की रचना की। और नारद जी भी जब श्रीमद् भागवत लिखने के लिए व्यास जी से जब आदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है परमेश्वर के अवतार हैं, व्यास जी वो कहते हैं, है ना, इसलिए आप इसकी रचना कर सकते हो श्रीमद् भागवत की। वो कहते हैं कि आप जो है भगवान के अवतार हैं और आप जो है इस शास्त्र की रचना करो, श्रीमद् भागवत की रचना करो, है ना। एक श्लोक ऐसा है, खैर जो भी हो, लेकिन नारद जी पुष्ट करते हैं कि व्यास जी भगवान के अवतार हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, है ना। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जान सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक इस तथ्य को मान ना लिया जाए तब तक शास्त्रों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ है। ये सबसे पहले मानना है कि जो शास्त्र हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, तो ये परम प्रमाण हैं, इसमें किसी प्रकार की जो है ना त्रुटि नहीं हो सकती, चार प्रकार की कमियां नहीं है। अच्छा, अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये चार शब्द हैं। पहला शब्द क्या है, भ्रम। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं भ्रम का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या त्रुटि, यथा रज्जु को सर्प या किसी सुक्ता को सोना मान लेना, ये भ्रम है। आप रस्सी देखते हैं और थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला अगर होता है ना, जैसे कि रात के समय थोड़ा थोड़ा या शाम को थोड़ा थोड़ा उजाला हो, अंधेरा हो, या सवेर के टाइम ही, तो वो जो रस्सी है वो कैसा मालूम पड़ती है, सर्प जैसी मालूम पड़ती है। तो इसको कहते हैं भ्रम, कुछ है और आपने कुछ समझ लिया, ये भ्रम है, है ना। तो आपके ज्ञान में ये भ्रम है, दैनिक जीवन में ये भ्रम होता है आपको, और कोई उदाहरण, हाँ सड़क में पानी नजर आता है, बहुत धूप है
तो आगे पानी दिखाई देता है, है ना। आपकी गाड़ी जा रही है और अगर सड़क बिल्कुल समतल है तो बहुत धूप है अगर, तो दूर चमकता है पानी, पानी दिखाई देगा। हाँ, तो ये जो है ना भ्रम है। हाँ, चोर को भ्रम होता है पुलिस का, है कि नहीं। कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो वो पुलिस सोचता है कि पुलिस है, ये पुलिस का भ्रम होता है। तो ये भ्रम है ना। और भी एक बहुत बड़ा भ्रम जो हमेशा हमारे जीवन में है और बचपन से है, शुरू से है और हमेशा बना रहेगा, मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। आप शरीर को जो देख रहे हैं तो आप सोचते हैं कि ये मैं हूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम को पहले दूर किया जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, प्रभुपाद जी बताते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, प्रसाद बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब जानो, खोजो कि आप कौन है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं अपने को, और शरीर को देख रहे हैं तो शरीर में आप अपनी पहचान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये भ्रम, भ्रम को समझना अच्छी तरह से कि भ्रम का मतलब क्या है, या किसी सुक्ता को सोना मान लेना। सुक्ता मतलब क्या है, कुछ भी चमकने वाली चीज हो, मान लो आप जो भी हो, तो सोने का भ्रम होता है कि भाई सोना सोना है, जबकि वो सोना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग ग्लिटरिंग इज नॉट गोल्ड, है ना। कोई भी चीज चमकती हो तो वो सोना थोड़ी है, सोने का भ्रम हो जाता है। तो सोना नहीं है और सोने का भ्रम हो जाता है, है कि नहीं। तो एक भ्रम है। अच्छा, और कोई, सूर्य बड़ा है लेकिन छोटा दिखाई पड़ता है, हाँ इसको आप भ्रम भी कह सकते हैं। लेकिन इसको जो है ना आप करण पाठों के अंदर इसको लाएंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा है और छोटा दिखाई देता है तो आप इसको भ्रम नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई दूर से कोई चीज छोटी दिखाई पड़ती। आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं और जमीन स्थिर है, आपको लगता है सड़क चल रही है, पेड़ चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से पेड़ जा रहे हैं। ट्रेन, दो ट्रेन अगर होती हैं, है ना, तो आपको लगता है कि वो ट्रेन जा रही है और आपकी ट्रेन खड़ी, जबकि आपकी ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन खड़ी है, तो ये भ्रम है, है ना। मोती जैसे, बहुत अच्छा बताया, ओस के जो कण होते हैं घास में दिखाई पड़ते हैं तो वो जो ना मोती जैसे मालूम पड़ते हैं, मोती का भ्रम होता है ये भी। हाँ, अच्छा, भ्रम मिल जाते हैं। हाँ, ये प्रभु जी बता रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ में मैदानों ने जो सभा बनाई थी पांडवों के लिए, तो उसमें क्या था, इस तरह की बनाई थी कि जहां पानी था वहां जमीन का भ्रम होता है, और जहां जमीन थी वहां पर पानी का भ्रम हो रहा था, है कि नहीं। हाँ, जहां पर दरवाजा है तो वहां पर वो दीवाल दिखाई दे रही कि, और जहां पर दीवाल है वहां पर दरवाजा है दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ये भ्रम के उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा शब्द क्या है, प्रमाद। अच्छा, प्रमाद क्या है, प्रोपल कह रहे हैं ध्यान ना देना या सच्चाई को गलत समझना ही प्रमाद है। प्रमाद का मतलब है कि आप गलती करते हैं, गलती कभी अनजान में करते हैं, कभी जानबूझ के करते हैं, गलती करते हैं, है ना। अब इसके उदाहरण समझेंगे, जैसे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं मया प्रमादात प्रणयेन वापी, मैंने आपको वो कैसा श्लोक है, सखेति मत्वा प्रतिभम्य दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अपना सखा मान करके, आपको मैंने सखा मान करके और क्या कहा है, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, अजानता महिमानम तवेदम, तुम्हारी इस महिमा को ना जान करके मया प्रमादात, प्रमाद से अथवा प्रणय से प्रेम पूर्वक मैंने आपको इस तरह से बोले, जबकि क्या बोलना था, जैसे अभी अर्जुन बोल रहे हैं, विश्वरूप का दर्शन करके अर्जुन कृष्ण को कई नामों से बोल रहे हैं, कैसे, विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, है ना, इस तरह से बोल रहे हैं महाबाहु सहस्रबाहु, इस तरह के शब्दों को मुझे बोलना था और मैंने प्रमाद से आपको क्या बोला, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, मैंने ये बोला, तो हे मैंने गलती से बोला, अजानता महिमानम, ना जान करके मैंने गलती से, तो ना जाने से गलती होती है, हम लोगों से होती गलती, ना जान करके बहुत सी गलतियां होती हैं, नहीं जानते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, इसको प्रमाद कहते हैं, या प्रमाद जानबूझ करके भी गलती करते हैं, पागलपन, प्रमाद को पागलपन भी कहते हैं, पागलपन के कारण भी गलती करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि महात्मा गांधी को जब कीर्तन में जाना था, जहां कीर्तन के स्थल में वो जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी कि आपको वहां गोली से मार दिया जाएगा, लेकिन तो भी उन्होंने जान करके भी वो विचार नहीं किया इस पर और वो गए कीर्तन के स्थल में। तो ये क्या है, प्रमाद, भूल, प्रमाद। लेकिन महापुरुषों में ये गलती नहीं होती, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जब उनको पता चला कि पुलिस वालों ने बताया कि देखिए हमारे पास वो लोग आए थे, हमें 25,000 रुपये दे रहे थे कि भाई हम कुछ ना करें और आपके बारे में वो कुछ करना चाहते हैं और आपके भोजन में वो कुछ मिला करके देंगे, हमने तो 25,000 रुपये नहीं लिया, लेकिन आपको हम आगाह कर रहे हैं पहले से कि आप ध्यान रखो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रमाद नहीं किया, गलती नहीं की, क्या किया उन्होंने, प्रसाद लेना बंद कर दिया। कोई भी व्यक्ति जो एरा गेरा है प्रसाद देता है तो नहीं खाते थे, उनके जो विश्वसनीय सेवक थे उनके द्वारा बना हुआ ही वो खाते थे, है ना। तो ये नहीं है कि मतलब ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई कीर्तन है हम तो कीर्तन में जाएंगे, नहीं, तो उन्होंने गलती नहीं की, तो बहुत सावधानी से वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति प्रसाद दे रहे हैं, है ना। तो महापुरुषों में जो है ना, जो है इस प्रकार की चार त्रुटियां नहीं है। तो ये हमें समझना है प्रमाद। तो कई बार हम लोग जानते हैं कि ये गलत है, कोई बात गलत है, हम बोलते जाते हैं, जान करके भी कोई सही बात नहीं है, लेकिन तो भी बोलते हैं, और लापरवाही के कारण इसको प्रमाद, प्रमाद का मतलब लापरवाही भी होता है और पागलपन भी होता है और भूल भी होता है, भूल जाते हैं, भूल गए तो फिर वो चीज नहीं बताई। कई बार मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मेरे दिमाग में कई बातें आती हैं कि मुझे ये बोलना है, दिमाग में आई है और बोलते बोलते भूल गए, दिमाग से निकल गए, ये भी भूल है, दिमाग से निकल जाती है, इसलिए कई बार लिखना पड़ता है हमको, तो ये भी प्रमाद है, भूल। तो हमारे ज्ञान में इस प्रकार की भूल होती है, है ना, इसलिए बार बार ये ग्रंथ हमें पढ़ने पड़ते हैं और पुस्तक के रूप में ये दिए भी हैं, प्रभुपाद ने भी पुस्तक के रूप में ये सब ग्रंथ दे दिए हैं, तो हमारे अंदर ये सब प्रमाद हैं, और कुछ बात छोड़ जाते हैं, कुछ बात बताते हैं, लिखने में भी आप प्रमाद करते हैं, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, वो ना लिख करके आपने गलत लिख दिया, फिर काटना पड़ता है, होता है, जानबूझ के भी गलत लिख देते, क्या लिखना है आपको पता है क्या लिखना है, है ना, लेकिन तो भी वो हैज को हैव लिख दिया गलती से, है ना। तो इस तरह से जो है ना गलतियां होती हैं, तो ये प्रमाद कहलाता है, है ना। कोई उदाहरण और आप लोग बता सकते हैं गलतियों का, गलती, गलती का पुतला है आदमी, तो गलती का पुतला है, है ना, कहते ना मनुष्य गलतियों का पुतला है। हाँ मोहन रूपा, हाँ ध्यान ना देना, ये भी प्रमाद है, है ना। आप जाप कर रहे हैं लेकिन ध्यान से आप जाप नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्रमाद है। और आप कहाँ,
हम लोग बोलते हैं एक सेकंड ना आ रहे हैं, लेकिन
हाँ किसी काम को, किसी बात को हम कहते हैं और सोचते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी प्रमाद है, है ना। और कोई, हाँ हाँ गलत, हाँ ठीक है, आपको फोन करना है कोई नंबर और गलती से आपने दूसरा नंबर कर दिया, ये भी प्रमाद है। बहुत होती, बहुत गलतियां होती हैं इस तरह की, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, है ना, सड़क में चलते चलते अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं, अगर वो ब्रेक ना लगाए तो मर जाएं, लेकिन कई बार होते सड़क में चलते चलते जो है ना देख रहे हैं कि गाड़ी सामने है तो भी गाड़ी के सामने आ जाते हैं गलती से, प्रमाद प्रमाद में लापरवाही में एक दूसरे की चप्पल पहन लेते हैं, जानते हैं कि आपकी चप्पल यह है लेकिन तो भी दूसरे की चप्पल पहन ली है ना, या एक चप्पल दूसरी और दूसरी चप्पल दूसरी, ऐसे दो चप्पलें अलग अलग पहन ली, ये प्रमाद है। तो मनुष्य के ज्ञान में ये प्रमाद है लेकिन शास्त्रों में ये चीज नहीं है, शास्त्रों में ये चीज नहीं है। अच्छा, और तीसरा शब्द क्या लिखा है, विप्रलिप्सा। प्रभुपाद लिखते हैं विप्रलिप्सा ठगने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम लोगों में धोखा देने की प्रवृत्ति है, जैसे वैज्ञानिक लोग भी धोखा दे रहे हैं, वो चंद्रमा में नहीं गए, चंद्रमा में नहीं गए तो भी फिल्म पूरी तैयार कर दी, शूटिंग पूरी कर ली उन्होंने चंद्रमा की, है ना, अभी पर्दाफाश हुआ है कि वो लोग चंद्रमा में नहीं गए, लेकिन धोखा दे रहे हैं है कि नहीं। तो इस तरह धोखा देते हैं, और सड़क में चलते हुए आप किसी सड़क में चलते हुए आदमी से पूछते हैं कि कहाँ इधर का रास्ता वहां का रास्ता कहाँ है, तो वो जो ना कुछ का कुछ बता देता, उसको पता नहीं है तो भी कुछ ना कुछ बता देता है, इधर चले उधर चले जाओ, इस तरह से बताते हैं। तो इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। अगर शास्त्र ना हो हमारे सामने, ग्रंथ ना रखा हो, तो हम जो ना कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग बहुत सी किताबें लिखते रहते हैं, किसी भी विषय में वो किताबें लिखते जाते हैं और उनको पता नहीं है इन तो भी किताबें लिख रहे हैं, तो इसको ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। इसका भी कोई उदाहरण, हाँ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जीवन पदार्थ से निकला है तो ठग रहे हैं, कई बातें हैं वो समझते भी हैं कि गलत हैं लेकिन वो ठगने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये ठगने की प्रवृत्ति है, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। डार्विन कहता है कि हम बंदरों की संतान है, तो धोखा देने की प्रवृत्ति है। और कई उदाहरण, मतलब कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं करोड़ों करोड़ों साल पुराने, जो ना नर कंकाल मिले हैं, मनुष्यों के कंकाल मिले हैं ना, एवं उनको दबा रहे हैं, जानबूझ करके दबा रहे हैं उन साक्ष्यों को। सोने की जंजीर, 12 करोड़ साल पुरानी सोने की जंजीर मिली है, कोयले के अंदर निकली, तो उन सब कुछ अगर बंदर था आदमी तो कैसे फिर सोने की जंजीर बनी, और भी बहुत सी चीजें, फूलदान है, कई चीजें निकली जो करोड़ों करोड़ों साल पुरानी, तो भी उन चीजों को दबा करके और डार्विन के जो सिद्धांत है उसको जो ना लागू कर रहे हैं, और जो है स्कूलों में कॉलेजों में डार्विन का सिद्धांत फिर भी लगाया जा रहा है। ज्ञान फिल्टर, इसको नॉलेज फिल्टर कहते हैं, कि जो जो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जो सूचनाएं मिलती हैं उनको तो उसमें डाल देते हैं, और जो डार्विन के सिद्धांत के विरुद्ध सूचनाएं मिलती हैं उनको वो अलग कर फिल्टर कर देते हैं। छन्ना, हाँ आपको कुछ कहना, हाँ
हमारे पास होता है कभी चीज जब झूठ बोल देते हैं,
धोखा देने की प्रवृत्ति, तो इस तरह से जो है हमारे ज्ञान में ये है, अगर किसी व्यक्ति से आप कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें जो है ना ये चार प्रकार के दोष हैं। हाँ प्रभु, हाँ कहता धर्म है ना, कपट धर्म, तो ये भी है जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, धर्म प्रोजित कहत गोत्र पर्व, जो कपट धर्म है उसको बिल्कुल निकाल दिया गया है, कपट धर्म है। और आपको कुछ करना है, साइन कर दिया क्लास देना है और फिर जो ना तो धोखा देते हैं, जिस दिन उनका क्लास है उस दिन वो नहीं आते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, तो ये धोखे से मारा, धोखा दे करके मारा, तो धोखा देने की प्रवृत्ति है। अच्छा इसके बाद क्या है, करना पाटाओ। प्रभुपाल लिख रहे हैं करना पाटाओ भौतिक इंद्रियों की अपूर्णता का सूचक है, ऐसी अपूर्णता के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जो वस्तु अति दूर है या अत्यंत लघु होती है उसे आंखें नहीं देख पाती। करुणा पाठ है ना, अब जैसे सूर्य है ना, तो बहुत दूर होने से छोटा दिखाई देता है, इसकी तो कोई बात नहीं है, छोटा दिखाई दे रहा है वो तो आप समझते हैं कि छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सूर्य में जो सूर्य देवता हैं और उनका रथ है, उनके घोड़े हैं, वो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपसे अगर कहा जाए सूर्य का वर्णन करो, तो आप इन बातों को बता ही नहीं सकते कि वो सूर्य देवता कैसे हैं और उनका रथ कैसा है, उनके घोड़े कैसे हैं, नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन स्वर्ग में सूर्य देवता ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। स्वर्ग में सूर्य का जो उदय है, जो होता है, तो उसी प्रकार से दिखाई पड़ता है जैसे कि आपके सामने कोई ट्रेन निकल रही है तो आप सब कुछ देख रहे हैं, है कि नहीं? इंद्रियों की पूर्णता मतलब दूर से आप दिखाई नहीं पड़ता। दूर से आपको कोई चीज इतनी धुंधली दिखाई पड़ती है कि उसमें मतलब क्या क्या चीजें हैं वो डिटेल आप नहीं देख पाते, आप देख ही नहीं पाते, तो आप वर्णन ही नहीं करेंगे। यहां धोखा नहीं है, इसको धोखा नहीं कहते हैं। करना पाठों का मतलब यह है कि आपकी इंद्रियां इस तरह से ढक गई, इंद्रियों में ऐसा पर्दा पड़ गया है कि आप देख ही नहीं पाते, आप सुन ही नहीं पाते। हाँ, तो ये भी करना पाठों है कि आप देख नहीं पाते। तो कई चीजें हैं आप देख नहीं पाते हैं, तो आप उनको बता ही नहीं सकते, कुछ नहीं बता सकते। तो इसमें भ्रम भी नहीं है और ना इसमें प्रमाद है, ना इसमें विप्रलिप्सा है। आप इसको धोखा नहीं कह सकते कि हम धोखा दे रहे हैं। नहीं, मैं सूर्य का वर्णन कर रहा हूं, तो जैसा मैं देख रहा हूं वैसा बता रहा हूं। ये सूर्य के जो है, जो देवता हैं, उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया कि भाई सूर्य लोक में वो सूर्य देवता मुझे दिखाई दे रहे हैं और सूर्य के रथ के साथ घोड़े हैं और घोड़े के रंग भी कैसे हैं। जैसे कि वो थी कश्यप की जो पत्नियां थी ना, विंता और कद्रु, तो उन्होंने सूर्य का दर्शन किया तो घोड़ों को भी देखा, है ना। तो विनता ने कहा कि देखो कैसा सूर्य का रथ है, है? और कितने सुंदर घोड़े हैं, देखो घोड़े सफेद हैं। तो विनता कहती है लेकिन पूंछ काली है, घोड़ों की पूंछ काली है। अब आप कुछ नहीं बता सकते हैं कि सूर्य के रथ के घोड़े कैसे हैं, पूंछ कैसी है। आपकी तो बिल्कुल इंद्रियां बिल्कुल ढकी हुई हैं, लेकिन वो देख रही थी तो घोड़ों की पूंछ काली काली है। हरे कृष्ण, घोड़ों की पूंछ काली है, भिन्नता ने कहा नहीं सफेद है। तो इसी में जो है ना, उन्होंने शर्त करी कि अगर कल हम देखेंगे, अगर काली दिखाई दी पूंछ तो तुम मेरी दासी बन जाओ, अगर सफेद दिखाई दी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और फिर कद्रु जो है अपने पुत्रों को बोलती है कि मैंने शर्त रखी है और कल सवेरे हम देखेंगे सूर्य के रथ को दोबारा। तो सांपों ने कहा तुम तो अब हार जाओगी, तुमको भिन्नता की दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ों की पूंछ तो सफेद है। तो कद्रु कहती है फिर तुम लोग ऐसा करो कि घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ, जिससे कि काली दिखाई पड़े पूंछ घोड़ों की, है ना। तो अगले दिन फिर यही हुआ कि जो सर्प थे वो घोड़ों की पूंछ में लिपट गए और पूंछ काली दिखाई पड़ी, तो इस कारण से भिन्नता हार गई और भिन्नता को दासी बनना पड़ा, है ना। तो मतलब कहने का यह है कि आप देखते हैं सूर्य को दूर से, तो आप कभी नहीं बता सकते हैं कि सूर्य का रथ कैसा है और घोड़े कैसे हैं और किस रंग के हैं। और उनका सारथी अरुण है, अरुण सारथी जिसके जिसके पैर नहीं है, बिना पैर का सारथी है वो अरुण, गरुड़ का ही बड़ा भाई है जो सूर्य का सारथी है, आप कुछ नहीं बता सकते। तो इसको कहते हैं करना पाठो, आप कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि ट्रेन आपने दूर से देखा, जिसका उदाहरण प्रभुपाद ने दिया ना कि गाड़ी को दूर से जिस व्यक्ति ने देखा तो उसने क्या बताया कि एक धब्बा है जिसमें लाइट है और धुआं है, प्रकाश है और धुआं है और एक धब्बा है जितने ही थे। तो इसमें कोई धोखा नहीं था, ना तो ये धोखा है और ना ही कोई भ्रम है, ये करना पाठव है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता है कि उसमें कई डिब्बे भी हैं और कई यात्री भी बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं देख पा रहा। तो करना पाठों का मतलब ये होता है कि आपको जानकारी ही नहीं मतलब पूरी मिल पाती कई चीजों की, क्योंकि तो बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे कि हवा में जो आप श्वास ले रहे हैं कितने कीटाणु हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, आप देख ही नहीं सकते हैं, तो आप कोई जानकारी दे नहीं सकते हैं हवा के बारे में। पानी में भी बहुत से छोटे छोटे कीटाणु हैं, आप पीते हैं, हाथ धोते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो ये करना पाठो इसको कहते हैं कि आपको जानकारी मिलती ही नहीं किसी प्रकार से, इसको करना पड़ो। तो ये ज्ञान में इस प्रकार की कमियां हैं। लेकिन शास्त्रों में ये चार प्रकार के दोष नहीं है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कर्णापाठों के बारे में, जो वस्तु अति दूर है या अत्यंत लघु होती है उसे आंखें नहीं देख पाती, यहां तक कि अपनी आंख की पड़ोसन पलक को मनुष्य नहीं देख पाता। आप अपनी आंख की पलक को भी नहीं देख सकते, है ना, कर्णापाठों। और यदि उसे हर वस्तु पीली दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार कान दूर की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि भगवान उनके अंश तथा स्वरूप सिद्ध भक्त दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, अतः वे ऐसे अभावों से दिग्भ्रमित नहीं होते। तो चार प्रकार के दोष जो है भगवान में नहीं है, उनके भक्तों में नहीं है और शास्त्रों में नहीं है। तो इस चीज को जो है प्रभुपाद जी सिद्ध कर रहे हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, आप नहीं, वो विषय से थोड़ा दूर है। और कोई प्रश्न किसी का? आप धन्यवाद, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जैसे कोई श्रेष्ठ वैष्णव महाभागवत चश्मा भी लगाते हैं तो उनके दोष तो है। हाँ, इंद्रियों में दोष है, इंद्रियों में दोष है, इन ज्ञान में मतलब दोष नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करते हैं कहाँ से? शास्त्र साधु आचार्य से, इसलिए उनमें दोष नहीं होता। यहाँ पर हमें यह समझना है कि प्रभुपा जी ने ये दावा नहीं किया कि उनमें दोष नहीं है, उनमें तो उन्होंने तो कहा कि मेरे अंदर सब प्रकार के दोष हैं। इस ज्ञान में दोष नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है ये परंपरा से प्राप्त किया है, एवं परंपरा प्राप्त हम राजर्षियो विदु। तो परंपरा के द्वारा जो है ये प्राप्त हुआ है ज्ञान है, तो इसलिए इसमें दोष नहीं है। तो मुख्य चीज ये है कि चूंकि वो संदेश को दोहराते हैं, उसमें अपनी बात ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं, प्रभुपाद ने यही दावा किया कि मेरी अगर कुछ योग्यता है तो यही है कि मैंने इस संदेश में, जो चैतन्य महाप्रभु संदेश है, इसमें ना कुछ जोड़ा है ना कुछ घटाया है, इसलिए ये दिव्य है, इसलिए ये पूर्ण है।
गौर हरि, गौर हरि। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे
Ram 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 Hare Hare Ram, 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 Ram.